آیت بر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. واپس آ جائیے اسی ماحول میں پلیز, یہ خسر بسر نہیں چاہیے, ٹھیک ہے؟ سب واپس آ جائیں. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف, بلکہ نیکی یہ ہے کیا, من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اس کو سنتے وقت ذہن میں درخت کو رکھیے گا کہ نیکی کی تدریج کیا ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں, سمجھ نہیں آتا کون سی بات پہلے مانے کون سی بات میں. کبھی انسان نیا نیا دین کی طرف آتا ہے نا, تو اس کو اپنے ہر کام میں خرابی دکھتی ہے. اب وہ کہتے ہیں میں کیا کروں, نماز سے کام شروع کروں, میں پردہ کروں, میں روزے رکھوں, یا میں اپنے کپڑے ٹھیک کروں, گانے سننا چھوڑوں, ہے نا یہ کوسچنس. تو یہ آیت اس کا جواب ہے کہ نیکی کی ترتیب کے, اب یہ جو ترتیب آ رہی ہے نا آیت میں, آپ اس پہ ون ٹو یا پھر ایرو لگاتی جائیے, من آمن باللہ ون, پھر ٹو اول یوم الآخر, اور اسی طرح ایرو لگا کر یہ سارے کام کرتے جائیں, ترتیب آپ کو مل جائے گی. سب سے پہلے اللہ پر ایمان, عقیدہ درست, لو اف اللہ, حب فی اللہ, آمن اشد حب للہ, اور اسی طرح ہوتے ہوتے انسانوں کے حقوق دیتے جائیں گے, تو آپ دیکھیے گا آپ نیکیوں کا سرسبز درخت بنے گا. کیا ہے نیکی؟ کہ انسان اللہ کو مانے اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر, مسکینوں اور مسافروں پر, مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلامی سے غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے, نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے, اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں, اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں, یہ ہیں سچے لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. بڑی اہم آیت ہے, اگر اسے ایک آیت کو ہم دین کا خلاصہ کہہ دیں تو غلط نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کہ نیکی کی خواہش ہر بندے میں, یہاں لفظ بر آیا ہے اور بر بر سے ہے, بر کہتے ہیں جنگل کو, جنگل کیا ہوتا ہے اس میں چھوٹی بڑی لکڑیاں ہوتی ہیں. اسی طرح نیکی کسی ایک خاص ڈائمینشن کا نام نہیں ہے. جیسے ہم کبھی کسی ایک کام پہ بہت زیادہ ریجڈ ہو جاتے ہیں نا اور دوسرے چھوڑتے ہیں, نیکی کیا ہے کہ پورے دین کو مانو. اللہ نے انسان کی فطرت میں نیکی رکھی ہے, اور نیکی کے سکون دینے والی چیزیں, آپ اس پہ لیکچر بھی سنیے گا, نیکی کی نیکی کیا ہے, دو سیڈیز کا لیکچر ہے, ویب سائٹ پہ بھی ہے اور دعویٰ سیڈیز میں بھی بنا, بہت ہی زیادہ ڈیٹیلڈ اور بہت زیادہ دین کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے. کسی نان مسلم کو بھی اگر اسلام کی حقیقت جاننی ہے تو اس کے لیے بیسٹ آیت ہے سننے کے لیے, اور اس کا لنک اگر چاہیں تو ویب پیج پہ ڈال دیجیے گا. لیکن خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ نیکی سکون دیتی ہے, اطمینان. جیسے آپ کسی بھی کشتی سے باہر آتے ہیں نا جب اپنی زمین پہ, تو سکون کا احساس ہوتا ہے. نیکی اصل میں بندے کے دل کو سکون دیتی ہے, اور نیکی وہ ہے کہ جس کو کرنے کے بعد ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کو محسوس کرتا ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی حد تک نیکی کرتا ہے. کسی سوسائٹی میں آپ دیکھیے عموماً چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. نمبر ایک کرمنلس, آپ کہتے ہیں یہ بہت برے لوگ ہیں, طوائف ہیں, پروسٹیچیوشن کرنے والی, لیکن آپ ان کے قریب جا کے دیکھیں وہ بھی کبھی کبھی محرم میں چندہ سبیل لگاتی ہیں پانی کی, چیریٹی کے نام پہ کچھ کر دیں گی, اس کا تو کہ ان کے بھی دل میں خواہش ہے نیکی کی. جیب کترے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, سارا مال جمع کر کے بعد میں لا کے اپنے باس کو دے دیتے ہیں, اپنے علاقے میں چوری نہیں کرتے, ان کی بھی یہ نیکی ہے. تو گویا کہ سب سے تھرڈ کلاس درجہ جو ہوتا ہے کسی سوسائٹی کا, وہ بھی کچھ نہ کچھ حد تک نیکی کرتا ہے. اس سے اوپر تھوڑا چلیے تو شریف شرفا, جیسے ہم سب عام لوگوں کو گنتے ہیں, نیکیاں بھی کرتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں, یہ سیکنڈ گروہ ہے. اس کے بعد تیسرے درجے پہ وہ گروہ آ جاتا ہے جس کو آپ کسی سوسائٹی کے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں, ایجوکیٹڈ, مہذب, ڈیسنٹ قسم کے لوگ, ڈاکٹرز, انجینئرز, اور اس طرح سے ذہنی طور پہ بہت اسٹرانگ لوگ ہیں. ان کی نیکی کے وقت پہ آئیں گے, وعدہ پورا کریں گے, حقوق العباد پورے کریں گے, اپنے ملازموں سے بھی بڑے پیار سے بات کریں گے, ایتھکس پہ بڑی بات کریں گے, لیکن دیکھا جائے تو نماز نہیں پڑھیں گے کبھی, کہتے ہیں اللہ نے کچھ نہیں کہنا اس سے. یعنی ان میں ریچولس نہیں ہوتے لیکن اخلاقیات بہت ہیں. ایک چوتھا اور آخری پرائم گروپ ہوتا ہے کسی جگہ سوسائٹی میں, وہ کون سا دیندار, جس کو آپ بعض دفعہ دین کے نام پہ مولوی حضرات, علماء, آئمہ, یعنی جو بھی لوگ ان کے نام دیتے ہیں, ان میں کیا دیکھا گیا کہ عموماً ریچولس بہت سخت ہوتے ہیں. نمازیں پانچ وقت پہ, وقت سے پہلے تہجد, شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھو, بیئرڈ ہو, کتنی لمبی ہو, یہ ریچولس پہ بہت بات کرتے ہیں. لیکن سب نہیں, بہت تھوڑے, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں اخلاق پہ زور نہیں دیتے, بیوی پہ سختی کریں گے, گھر پہ زیادہ نہیں ہے, لوگوں کو فتوے دیں گے. تو چاروں کی نیکی ادھوری ہے, असल नेकी यह है कि तुम्हारा दिल अल्लाह से जुड़ा हो और बंदों के साथ तुम्हारे मामले अच्छे हों, तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोग कल कामयाब होंगे। अब यहाँ से आगे पारे के आखिर तक हम देखेंगे अकसाम बिर, नेकी की मुख्तलिफ किस्में जो उम्मत मुस्लिमा की हैं। और यहाँ फिर जहन में रखिए कि जिसको उम्मत वसत का किरदार अदा करना है उसको दीन की सारी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। इसमें से पहली चीज़ जहाँ आप कसास है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमों में कसास का हुक्म लिख दिया। कैसे? अलहुर्रु बिलहुर्रि वलब्दु बिलब्दि वलउंसा बिलउंसा। आज़ाद आदमी ने कत्ल किया हो तो इस आज़ाद ही से बदला लिया जाए, ग़ुलाम कातिल हो तो वो ग़ुलाम ही कत्ल किया जाए, और औरत इस जुर्म की मुर्तकिब हो तो इस औरत ही से कसास लिया जाए। हाँ, अगर किसी कातिल के साथ इसका भाई कुछ नरमी करने के लिए तैयार हो तो मारूफ तरीके के मुताबिक खून बहा का फ़ैसला होना चाहिए और कातिल को लाजिम है कि रास्ती के साथ खून बहा अदा करे। ज़ालिक तख़फ़ीफ़ु मिन रब्बिकुम व रहमा, ये तुम्हारे रब की तरफ से आसानी और कमी है और रहमत है, और इस पर भी जो ज़्यादती करे इसके लिए दर्दनाक सज़ा है। और अक़ल और ख़िर्द रखने वालों, तुम्हारे लिए कसास में ज़िंदगी है, उम्मीद है कि तुम इस कानून की खिलाफ वर्जी से परहेज़ करोगे। आज इस्लाम की सज़ाओं को डेथ पेनल्टीज़ और इस तरह की इंसानियत सोच सज़ाएँ कहकर बदनाम किया जाता है। हालांकि आप देखिए कि जिस माशरे में कत्ल करने वाले को ये पता होता है कि मुझे इसके बदले में कत्ल होना पड़ेगा, तो वहाँ कत्ल की रेशो वो है जो आज सऊदी अरब में जाके आप देख सकते हैं। पूरी दुनिया में आज सबसे ज़्यादा हमें उसी मुल्क में इस्लाम का निज़ाम नाफिस दिखता है। लोग कहते हैं कि मुजरिम को ढील दो, इस्लाम कहता है मुजरिम को पकड़ो। इस्लाम की हमदर्दी किसके साथ है? मज़लूम के साथ। आज देखिए पूरी दुनिया की सोसाइटीज़ अमूमन मज़लूम को पीछे डालकर और ज़ालिम को सहूलत दे रही होती हैं, तो अल्लाह ताला ने यह अपना कानून बता के बता दिया कि इंसान की जान बड़ी कीमती है। इसी तरह आगे वसीयत के काम आता है, और कितना खूबसूरत दीन है कि ज़िंदगी भर भी गाइड करता है और मौत तक भी इंसान को तनख्वाह नहीं छोड़ता। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत इन तरका खैरन अलवसिया, तुम पर फ़र्ज़ किया गया कि जब भी तुम में से किसी की मौत का वक्त आए और वह अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो वालदैन और रिश्तेदारों के लिए मारूफ तरीके से वसीयत करे। ये हक है मुत्तकी लोगों पर। फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में से बदल डाला तो इसका गुनाह इन बदलने वालों पर होगा। अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। अलबत्ता जिसको ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वाले ने जानते बूझते या अनजाने में हक तलफी की और फिर मामले से ताल्लुक़ रखने वालों के दरमियान वो इस्लाह करे, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। इन्नल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह बेशक बख्शने वाला और मेहरबान है। वसीयत के मामले में हक तलफी नहीं करनी चाहिए। ये बीच की आयत है, पांचवे पारे में इंशाल्लाह डिटेल्स आएंगी। लेकिन याद रखिए कि वसीयत एक अच्छी हो तो इंसान को जन्नत में ले जाने का ज़रिया बन जाती है, और बुरी हो तो वो इंसान को जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बनती है। बस सब लोग गलत कामों की वसीयतें कर जाते हैं, बदल देना चाहिए उसको। जिसने गलत वसीयत की फिर उस पर अमल कर दिया गया तो वसीयत करने वाले को भी गुनाह होगा, उसको मानने वाले को भी होगा। इसके अहकाम इंशाल्लाह थोड़े से आपको पांचवे पारे के साथ बताऊंगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। आ गए रोज़े हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले अम्बिया के पैरोकारों पर फ़र्ज़ किए गए, इससे तवक्को है कि तुम में तकवा की सिफत पैदा होगी। रमज़ान और तकवा सीडी अगर नहीं सुनी तो सुन ले इस आयत को समझने के लिए। चंद मुकर्रर दिनों के रोज़े। कल एक दर्स जो था होया तो ओपन एयर में था, लेकिन उसका थीम जो था मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल था। अगर आप लोग वेलकम रमज़ान के लेक्चर्स वेबसाइट पे हैं तो उसमें से सूरत 3 की रोशनी में बताया गया था कि इंसान की तख्लीक का क्या मकसद है, तो मुझे लगता है कि एक आपके लिए पुशअप हो सकता है रमज़ान के अंदर कुछ करने का। चंद मुकर्रर दिनों के रोज़े हैं। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले, और जो लोग रोज़ा रखने की कुदरत रखते हों फिर ना रखें तो वो फ़दिया दें। एक रोज़े का फ़दिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, और जो अपनी खुशी से कुछ भलाई ज़्यादा कर दे तो ये इसी के लिए बेहतर है। वन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में यही अच्छा है कि रोज़ा रखो। असल चीज़ जो रमज़ान का तोहफ़ा है उसका तस्करा अगली आयत में है। शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राय रास्त दिखाने वाली और हक और बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली हैं। बस अब जो शख्स इस महीने को पाए, इसको लाजिम है कि पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो कि मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे। तो हमने इस वेलकम रमज़ान में क्या नीयत की थी कि इस साल के रमज़ान को शाहरुल कुरान बनाना है, सुनना, सुनाना, लिखना, पढ़ना। मत सोचें कि आप इससे बच जाएंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। कल से अब आपकी सोच बिल्कुल बदल जानी चाहिए, ऐसे फील करें कि अपनी ज़िंदगी का एक एक मिनट मैंने इस्तेमाल करना है इंशाअल्लाह ताला। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता, इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको। और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया, इस पर अल्लाह की किब्रियाई का इजहार और एतराफ़ करो और शुक्रगुजार बनो। अल्लाह हमें इसकी तौफीक तो दे। और वो खूबसूरत आयत जो आपको और मुझे बंदगी के रंग में रंग लेगी कि वाइज़ा साला का इबादी अन्नी फ़ैनी करीब मुजीब दावत दाइजा दान। ए नबी, और ए नबी मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे बारे में पूछें तो इनको बता दो कि मैं इनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता मैं इसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। बस इन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम इन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें। देखिए, पीछे से रमज़ान की बात चल रही है, आगे फिर रमज़ान की बात है। बीच में दो चीज़ें आ गईं, कुरान और दुआ। रमज़ान के अंदर कुरान और दुआ ऐसे ही है कि जैसे खाने के अंदर नमक और मिर्च, या किसी मीठी चीज़ के अंदर आप चीनी और दूध डाल लें। बहुत खूबसूरत मौका होता है कुरान को समझने का। अगर आज तक भी आपने सोचा कि ठीक है कुरान नहीं सुन रहे कुछ लोग तो खैर है, आज फिर एक कोशिश कीजिए अपने प्यारों को इस किताब से जोड़ने की। और दुआओं को मांगना है, दिन के मुख्तलिफ औकात में दुआएं मांगनी है। वेलकम रमज़ान में आपको एक छोटा सा तरीका बताया था, इसी तरह इंशाल्लाह कल से आपको थोड़ा सा और भी इस पर गाइड करेंगे सुबह के सेशन में कि किस तरह से हम रमज़ान को दुआओं का महीना बना लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा उसके बीच में ताल्लुक़ जुड़ जाए। और ये बंदगी का रंग है कि अल्लाह करीब लगता है। आप देखिए, आप किसी और को पुकारें रब के सिवा, क्या हर वक्त आपके पास होता है? माँ सब वक्त साथ होती है? बाप, शौहर, बेटा, बच्चा, दोस्त, सहेली? मैंने देखा है जो आपकी आपकी मदद करना भी चाहते हैं वो बेचारे भी नहीं कर सकते। क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ? आप दिल की गहराई से किसी की मदद करना चाहते हैं, कर क्यों नहीं पाते? आप खुद उस वक्त किसी मुश्किल का शिकार होते हैं। एक हस्ती है जो ऑलवेज अवेलेबल, और वो अल्लाह की ज़ात है। उसने कभी नहीं कहा बिज़ी, नॉट अवेलेबल, डोंट कॉल मी। वो कभी भी ऐसे मोड में नहीं जाता कि हम उससे अप्रोच ना कर सकें। दुनिया की हर दुकान बंद होती है कुछ ना कुछ वक्त पे, अगर कुछ हैं भी खुलती तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ। अल्लाह सुबहाना तला नहीं सोता हमारे लिए, फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये हम खुद सोचें। अब आगे रोज़े की कुछ और बातें। उहिल्ला लकुम लैलतस्सियामिर रफसु इला निसाइकुम। तुम्हारे लिए रोज़ों के ज़माने में रातों को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया। क्यों? इसलिए, ये है खूबसूरत लफ्ज़, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। यानी बीवी और शौहर का ताल्लुक लिबास और जिस्म का, क्या ताल्लुक होता है लिबास और जिस्म में? आप देखिए कि लिबास हमारी शख्सियत का आईनादार होता है, लिबास जिस्म के और कद के बराबर होता है। इसी तरह लिबास इंसान के ऐब ढांपता है, गर्मी सर्दी से बचाता है। ये सारी चीज़ें अगर आप शौहर और बीवी के एक दूसरे के लिए करें तो ये है खूबसूरत रिश्ता। शौहर और बीवी एक दूसरे के साथ बेहतरीन तरीके से कॉपरेट करते हैं, ऐप नहीं खोलते एक दूसरे के सामने, दूसरों को उसकी बुराइयाँ नहीं जाके बताते। और शौहर कैसा चूज़ करती है एक लड़की, ये शौहर एक औरत के जहन की अक्कासी करता है। जैसे लोगों को आप कपड़े पहने देखते हैं ना तो आपको अंदाज़ा हो जाता है इनकी चॉइस कैसी है। इसी तरह याद रखिए, रिश्तों के मामले में इंसान का असल खुल जाता है। और इस लिबास को काट देंगे और इसको दागदार कर देंगे तो क्या होगा, हर एक सोच सकता है। बेलिबास बंदा किसी को अच्छा नहीं लगता। इस तरह बिला वजह बग़ैर शादी के रहना, और या फिर शौहर फौत हो गए या तलाक हो गई और दोबारा शादी ना करना, ये भी वाजूब है। इस्लाम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब आगे फिर एक काम आता है, اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آنے لگ جائے۔ سماتی مسیام اللیل، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے صحبت نہ کرو، بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں۔ پہلے روزہ مشکل تھا، مغرب کے وقت سے عشاء کے بیچ میں پابندی اٹھتی، کھا لو پی لو، اور جو ہی عشاء کا وقت شروع ہوتا نیا روزہ شروع، اور کسی کی اگر عشاء سے پہلے آنکھ کھل جاتی آنکھ لگ جاتی تو بھی روزہ شروع، ہر پابندی تھی۔ قیس بن سرمہ نام کے صحابی کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا، کھیتوں سے کام کر کے تھکے ہارے آئے، روزے سے تھے، بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے، کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، مہمان ہمسائے سے پوچھ کے لاتی ہوں۔ گئیں، واپس آنے تک شوہر کی آنکھ لگ گئیں، اٹھے تو اگلا روزہ شروع ہو گیا، پھر اسی طرح اگلے دن کام پہ چلے گئے، دوپہر کی گرمی برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اس پر یہ ساری آیتیں اتری کہ اُحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ رَفَثُ إِلَى نِسَائِکُمْ، تو جن کو یہ 18 گھنٹے کے روزے مشکل لگ رہے ہیں وہ اس بات کو یاد رکھ لیں کہ پہلے روزے 20 سے 22 گھنٹے کے تھے، صرف مغرب سے عشاء کا بیچ کھانے پینے کا تھا۔ اب آپ اپنی مرضی سے چینج کریں کہ ہم اس وقت کھول لیں کر لیں، تو یہ آپ کی مرضی، اللہ نے ایسا نہیں کرنے کا حکم دیا۔ اب روزے کا تذکرہ ہوا، بھرپور باتیں ہوئیں،